This is a News Laundry podcast, and you're listening to Reporters Without Orders.
Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Snigdha, and joining me today are News Laundry reporters Basant and Ayan.
Hello. Hello, hello.
Also known as our News Laundry's Virat Kohli. I'll never get tired of this joke.
Lagatar har rahe hain.
It's actually becoming a little repetitive now.
It's
but
all right. It's all right.
Okay.
Your face is the same.
But lagatar har rahe
hain.
And
we also have joining us today a very special guest. He's our dear friend Pratik, who reports for News Laundry from Maharashtra. And he's finally decided to join us. Hello, Pratik.
thank you.
Sir, swagat hai aapka.
थैंक यू वसंत. थैंक यू.
आप यहाँ होते तो आपको माला भी पहनाते इतने दिनों बाद.
महाराष्ट्र
इलेक्शंस आई थिंक.
बोल दीजिए आते जाते रहे.
हाँ प्रतीक
आएंगे आएंगे आप बुलाओगे जरूर आएंगे
जरूर. ठीक है. सो टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग आप्स लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दिल्ली ऑब्वियसली. एंड do you guys remember the Bhima Koregaon case? It's not been in the limelight much recently because so much has been happening. But Pratik has written a series on it and we're going to be talking to him about it today. But before we begin, I want to tell all the new listeners about News Laundry. We are a 100% ad-free news platform and we need your support to stay afloat. So please go to www.newslaundry.com and click on the subscribe button on the top right corner of the website. And
also, all those who are listening to this podcast on platforms like Spotify, SoundCloud, iTunes and CastBox, do go to our website, newslaundry.com. We have a lot of cool stuff there. So just go to our website and check them out. And also those who are listening to the podcast on these platforms, please rate our podcast because more the ratings, more the listeners. So please do that.
Yes, please. So let us begin with some bizarre news stories. Basant.
मेरे लिए पिछले वीक में भी शायद मैंने यही कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में हनुमान जी की एंट्री हुई है
जी.
अरविंद केजरीवाल भले ही उनकी पॉलिटिक्स काम पे बात करते रहे पूरे चुनाव के दौरान, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हनुमान जी की एंट्री कराई और कल चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दोबारा ये कहा कि आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी ने दिल्ली वालों पर आशीर्वाद दिया है, उनको भी धन्यवाद. तो इस तरीके की चीज़ें राजनीति में व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि भगवान की एंट्री पॉलिटिक्स में तो नहीं होनी चाहिए. और अरविंद केजरीवाल एक गलती कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के वो बीजेपी की तरह कहने लगे कि हम एक 4,000 फुट या 3,000 फुट जितना भी सॉरी ज़्यादा मैंने बोल दिया इतना फुट ऊंचा दिल्ली में हनुमान मंदिर बनवाएंगे. हालांकि हनुमान जी की मूर्ति ऑलरेडी है, कहीं बाहर है, क्या पता वो कहेंगे हम उससे ऊँची बनवाएंगे. तो
कोई ठिकाना
नहीं. थोड़ा सा वो है कि केजरीवाल को
भगवान की एंट्री पॉलिटिक्स में तो पहले हो चुकी है, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम केजरीवाल, राइट.
इसी के साथ मैं थोड़ा वो ऐड करना चाहूंगा, कल आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर लोग ऐसे पोस्टर्स लेके घूम ही रहे थे बजरंगी भाईजान बोल के केजरीवाल को. तो ये बात पूरी मतलब फैल गई है.
और कल सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि जब वोटिंग स्थल पे लोग वोट करने जा रहे थे तो बीजेपी के लोग थे वो कह रहे थे जय श्री राम, हिंदू खतरे में, हिंदुओं को वोट देना. तो हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे बजरंग बली जिंदाबाद. तो इस तरीके की मतलब
थोड़ा ये राम वर्सेस हनुमान जैसा हो गया है.
स्ट्रेंज. प्रतीक आप बताइए आपका क्या है बिजार न्यूज.
मेरा बिजार न्यूज ये है कि अभी एक कुछ समय पहले जब रतन टाटा ने इंस्टाग्राम में उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे,
हाँ,
तो उन्होंने अपना एक फोटो पोस्ट किया था उसमें, हाँ, जिसमें वो नीचे बैठे हैं.
अच्छा.
तो काफी उनको कमेंट्स वमेंट्स मिले, काफी लोगों ने उनको बधाई दी इसकी. उनमें से एक जो भी इंस्टाग्राम यूजर थी उन्होंने उनको छोटू ऐसा लिख के मेंशन किया था, मतलब अच्छे उसमें किया था, बट उसके बाद वो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था पब्लिक ने. तो रतन टाटा मतलब उनके बचाव में आए. तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बिजार न्यूज़ है.
बिल्कुल. ऑलराइट अयान व्हाट अबाउट यू.
तो माय बिजार न्यूज़ इज रिलेटेड टू द इलेक्शन रिजल्ट्स ओनली. सो आफ्टर द रिजल्ट्स बिकेम क्लियर कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम पुट आउट अ ट्वीट एंड ही सेड आई एम just quoting it, he said, "Aap won, bluff and bluster lost. The people of Delhi, who are from all parts of India, have defeated the polarizing, divisive and dangerous agenda of the BJP. I salute the people of Delhi who have set an example to other states that will hold their elections in 2021 and 2022. Now, like this message in itself doesn't have anything wrong, but this was coming from a very tall Congress leader and there was not a single word about the Congress party. So isi tweet ko leke another senior leader from the party, Sharmishtha Mukherjee, daughter of former president Pranab Mukherjee, and she's also the president of Delhi Mahila Congress. So she kind of, you know, I mean, hit back would be a harsh word, but she replied to Kejriwal, replied to Chidambaram, and she said, with due respect, sir, I just want to know, has the Congress outsourced the task of defeating BJP to state parties? If not, then why are we gloating over AAP victory rather than being concerned about our drubbing?
Right.
And if yes, then we, that is the Pradesh Congress committees, might as well close shop. So some kind of, I know, war of words broke out between these two leaders. Yeah.
इसके अलावा पीसी चाको ने सुबह एएनआई से एएनआई को बताया कि शीला दीक्षित की वजह से मतलब जय 13 में हमारे वोट परसेंट कम हुए 15 में कम हुए तो उस पर मिलिंद देवड़ा ने कमेंट किया फिर उसके बाद कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जब जब शीला जी को पावर दिया गया 13 के चुनाव में उनके हाथ में पावर था तो वोट परसेंटेज ठीक था 15 के चुनाव में उनके हाथ में पावर नहीं था वोट परसेंटेज गिरा 19 के लोकसभा चुनाव में उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई तो फिर 26% वोट परसेंट हो गया इस बार पीसी चाको वो थे चुनाव देख रहे थे 4-5% कुछ हुआ है और जितने भी आम आदमी चुनाव जीती है उससे ज्यादा तो इनका जमानत जब्त हो गया 63 सीटों पे जमानत जब्त हुआ है कांग्रेस का
राइट सो माय बिजार न्यूज इज फ्रॉम इंडिया बसंत
दिस टाइम ओके डोमेस्टिक डोमेस्टिक बिजार न्यूज
So, it's Sudhir Chaudhary. Poor guy. He really lost his shit when the exit poll started because AAP's victory was inevitable and he just couldn't handle it. He really lost his marbles and he went on to blame Delhi people. He called them lazy and smartphone addicts who only want free stuff. And they don't care about, you know, the nation's security and Pakistan and Shaheen Bagh, you know. So he was very angry. He's very angry with Delhi people. And yesterday also he went aur bhi pagal. I mean, sorry to use the word, but it really seemed like he's gone mad.
Snigdha ma'am, jab aapki mehnat safal nahi hoti hai na, to dukh hota hai.
हाँ,
तो उनको माफ किया जाना
लेकिन
चाहिए
दुख को तो हैंडल करना चाहिए ना कम से कम न्यूज़ स्टूडियो में तो नहीं दिखना चाहिए
ब्रेकअप के बाद कुछ लोग लगते हैं अपनी पार्टनर पे आरोप लगाने बहुत लोग होते हैं जिसको सह लेते हैं कुछ लोग नहीं सह पाते हैं
सुधीर चौधरी is heartbroken basically so yeah that's my bizarre news now let's come to the real issue AAP's victory in Delhi. They won a total of, out of 70 seats, they got 62. BJP won 8. Congress, 0.
Again.
So, yeah. So, what made me really happy was that Kapil Mishra and Tejinder Bagga, both of whom are known for their vicious rhetoric, both of them lost. And Basant, Delhi ki janta... इतनी भी भोली नहीं है
नहीं ये कहना जल्दबाजी है क्योंकि यही जनता 6-7 महीने 8 महीने पहले 7 सीटें बीजेपी को दी थी बीजेपी के जो राजनीतिक व्यवहार है जो उनके मुद्दे हैं उसमें खास परिवर्तन तो नहीं है ना लोकसभा चुनाव में यही बातें हो रही थी वहीं पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक मुद्दा था वहीं अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव में हाँ ये हो सकता है कि कुछ लोगों के जैसे आपने कहा कि मुझे खुशी है तो मुझे कपिल मिश्रा की हार से व्यक्तिगत खुशी है क्योंकि वो चुनाव को इंडिया पाकिस्तान बना दिए थे दिल्ली में देश की राजधानी में चुनाव हो रहा है ये इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा ही नहीं और अगर कपिल मिश्रा की बात मान भी लें तो कल पाकिस्तान की हार हुई है ना ये तो मान लेना चाहिए तो पाकिस्तान मतलब बीजेपी अगर उनकी बात तो दिल्ली की जनता ने जो हम ग्राउंड पे देख रहे थे सुन रहे थे उनको जो केजरीवाल ने जो आखिरी 6-1 साल में जो काम किए वो डायरेक्ट मुनाफा पहुंचा रहा था
बिल्कुल
और किसी का भी महीने के 500 रुपये बच जाए ट्रैवलिंग के 10-20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये बच जाए तो वो एक डायरेक्ट आर्थिक फायदा होता है और दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजाना की आमदनी 400 रुपये 300 रुपये 500 रुपये है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं तो उनके लिए अगर 300 रुपये का बिजली बिल ही महीने का बच रहा है 400 रुपये का ट्रैवलिंग का बच रहा है तो वो डायरेक्ट फायदा है मोहल्ला क्लिनिक बीमारी में तो इस वजह से केजरीवाल जीते हैं ना कि एक प्रशांत किशोर का भी फैक्ट लाया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के होने से कोई फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को हाँ उसमें ये प्रशांत किशोर ने शायद ये किया हो कि अरविंद केजरीवाल को साइलेंट कर दिया शाहीन बाग को मुद्दे को इग्नोर किया तो ये सब उनका उनकी चाल हो सकती है, लेकिन दिल्ली में जनता ने केजरीवाल के उन कामों के आधार पर जिताया है जो उनको डायरेक्ट आर्थिक फायदा पहुंचा रही है।
राइट, हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कंपेयर टू द 2015 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस द वोटर टर्नआउट वाज लो this
low,
time
yes, yeah.
right and a lot of people said are saturday hai delhi ke log chill kar rahe hain but that's not a good enough reason
Lower
to not
around.
exercise your right and your duty Basan, Ayan, what do you have to say? I mean, why do you think people
no
didn't
I mean
come
I think Basant has nicely explained why the Aam Aadmi Party won. I think everybody knew that they would win.
No, I'm talking about the voter turnout.
That I can't say.
Because you were on the ground.
I think it's lower by some 4-5 percentage
right,
points.
Right.
So that's significant. And but I mean, you never know. I mean, because it was not that. I mean, the weather was, you know, not
weather
favorable.
Was
weather was great. So yeah. I couldn't see any plausible picture, any reason for the people not to come out.
एक चीज हमें और भी देखना होगा, मतलब वोट परसेंट कम हुआ इसका कारण तो हम नहीं बता सकते डायरेक्ट क्या कारण था।
बिल्कुल,
लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली में नफरत की हार हुई, कम्युनल जो स्पीचेस दिए गए थे वो हार हुई। लेकिन आप अगर आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि उन्होंने कम्युनल स्पीच दिया, इसमें सच्चाई भी है कि उसके तमाम नेताओं पे इसी ने बैन भी लगाया, दो नेताओं पे। लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है 5%, सीट नहीं मिली हो
6%,
उनको सीट भले ना मिली हो, सीट तो 3-8 हुए हैं, लेकिन उनका वोट परसेंट बढ़ा है। तो दिल्ली की जनता ने एक रिजेक्ट किया है बीजेपी को, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, वोट परसेंट उनका बढ़ा है, कांग्रेस काफी पीछे चली गई, वरना फायदा होता बीजेपी को।
एग्जैक्टली, मैं जस्ट टू बिल्ड ऑन व्हाट ही इज सेइंग, आई मीन ऑफ कोर्स इफ यू जस्ट गो बाय द नंबर्स ऑफ द सीट्स देन ऑफ कोर्स इट्स लाइक हैंड्स डाउन इट्स अ मैसिव विक्ट्री फॉर द आम आदमी पार्टी
एंड बीजेपी इज डन बेटर,
एंबैरेसिंग डिफीट फॉर द बीजेपी, बट वोट परसेंटेज एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट as Basan said, I mean the same people, who knows, like 2 years later in the MCD elections also the BJP again might, you know, repeat
right.
their 2017 performance. Oh, so you can't say, I mean none of us can say that it's a victory for the Aam Aadmi Party and a defeat for the BJP. I think the people have clearly decided how they want to vote in respective elections. So that has become clear now.
You know, after AAP has won, what everybody is talking about is the Delhi model.
Yeah.
Right.
Yeah.
And how other state governments also will maybe try to replicate it.
Yes.
Tell us more about the Delhi model and how easy is it going to be to replicate it in other places? Will it work? You know?
देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे नीतीश कुमार, उनके जो पार्टी के नतीजे हैं जहां जहां से बीजेपी जदयू चुनाव लड़ी थी, 52,000-51,000 उनको वोट मिले हैं। तो केजरीवाल का जो मॉडल है, मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में नीतीश कुमार 15 सालों से शासन कर रहे हैं, वहाँ के जिला अस्पताल में भी पंखे नहीं होते गर्मी के दिनों में। अब मरीज बेचारा, मान लीजिए मैं पिछले दिनों घर पे था, एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर मैं गया अस्पताल, उस वक्त वो दर्द से और गर्मी से परेशान थी, मई का महीना था, और पंखा नहीं है जिससे थोड़ी सी राहत मिल सके। बिहार में जो स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षा मित्रों के जरिए पढ़ाई हो रही है, जिनको ये नहीं पता कि बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम तो बर्बाद है, मतलब ग्रेजुएट होने में आपको 5 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं 3 साल की जगह पे। केजरीवाल ने एक काम किया, जैसे शिक्षा, कम से कम एजुकेशन को सेंटर में तो लाया जो हमारे यहाँ नहीं रहता सेंटर में, हेल्थ को सेंटर में तो लाया जो बेसिक चीज़ है। अब बिहार में, दिल्ली में शिक्षा का स्तर सुधरा है, बिहार में शिक्षा का कोई बात ही नहीं करता। दिल्ली में तो हालांकि क्राइम इनके पास नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक।
लेकिन देखिए, इसमें जो आप बोल रहे हैं ना,
जी
केजरीवाल ने बहुत ही, मतलब वो उनकी जो टीम है जो बेसिकली एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए हैं, वो बेसिकली आतिशी मार लेना, तो वो उन्होंने बहुत सुपर काम किया है कि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद जो हेल्थ का, जो हेल्थ सेक्टर, मतलब हेल्थ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें मतलब एक अमीर से लेके गरीब हर, मतलब हर तबके का आदमी वहां जाके अपना इलाज करा सकता है और बहुत बेहतर इलाज करा सकता है। लेकिन जो बात देखिए दिल्ली में, और ये जैसे बहुत सारी चीजें उन्होंने मुफ्त भी करी है,
जी जी
ठीक है, तो पब्लिक उनके काम के देख के उन पर अट्रैक्ट हुई है। लेकिन दिल्ली का अगर आप ज्योग्राफिकल, मतलब जो उसका एरिया अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी स्टेट से, जैसे बिहार या किसी और स्टेट से, तो वो टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल केरला में देखिए, केरला में बहुत अच्छी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका, जो दिल्ली में तो बहुत बाद में हुआ है, अभी केजरीवाल के आने के बाद उन्होंने किया है। लेकिन केरला में ये जो वेलफेयर स्कीम्स है, मतलब वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए, वहां के हॉस्पिटल्स देख लीजिए, तो वो पहले से अच्छे हैं, तो उसको रेप्लीकेट करना बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए उतना आसान नहीं होगा।
हाँ।
जैसे मसंद ने बताया, बिहार का एग्जाम्पल दिया
जी,
तो बहुत उसके लिए बहुत मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वो उस मशीनरी को चलाना पड़ेगा जो कि दिल्ली में केजरीवाल चला रहे हैं, बट इतने बड़े एरिया में, बिहार बहुत बड़ा स्टेट है,
exactly.
उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मतलब हाँ। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल चाहिए।
लेकिन सर 15 साल अगर आप सरकार में रह गए, अगर धीरे धीरे ही किए होते तो कुछ हद तक परिवर्तन तो आना चाहिए था ना, 15 साल बहुत होता है।
पॉलिटिकल विल चाहिए उसके लिए, मतलब चाहे तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। उन्होंने करके दिखाया, जबकि भले ही छोटा इलाका बहुत छोटा होगा बट उन्होंने किया। अगर 15 साल अगर किसी का राज है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री ले लीजिए, लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह, शिवराज चौहान ने फिर भी काफी बेहतर काम किया है, बट जो स्कूल जिसकी वजह से केजरीवाल जीत के हैं, स्कूल और हेल्थ, वो केरला को छोड़ के आए, मेरे को नहीं लगता है शायद किसी स्टेट में इतना अच्छा हिसाब किताब है।
टॉकिंग ऑफ दिस मुफ्त का जो भी बिजली पानी जो भी है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द होल फ्रीबी कल्चर, राइट, दैट आप you know BJP, especially come from BJP and also Sudhir Chaudhary. So what do you guys what do you guys think about?
एक वीडियो वायरल हुआ न्यूज 24 चैनल का, एक महिला बस में सफर कर रही थी, लड़की थी, महिला नहीं थी, उसको रिपोर्टर ने पूछा कि केजरीवाल का काम कैसा लगता है, तो वो बोली कि अरे बकवास है, सब कुछ फ्री कर दिया है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आपने टिकट लिया, वो कही नहीं मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो जब फ्री है तो क्यों लें। तो केजरीवाल ने ये भी तो कहा है कि जो कैपेबल हैं, जिनके पास क्षमता है, वो ले लें।
जी बिल्कुल।
तो मुफ्त का वो केजरीवाल ना अपने घर से दे रहे हैं, ना मोदी जी अपने घर से देते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता को जा रहा है, तो टैक्स पेयर का पैसा इसलिए होता है कि वेलफेयर में खर्च हो।
बिल्कुल।
और बाकी देशों में तो मैं जहां तक सुना है, मैं देखा नहीं कि वहां एजुकेशन लोन दिया जाता है कम सस्ते, भारत में भी है, और शिक्षा मुफ्त है, हेल्थ मुफ्त है, तो ये बेसिक चीज अगर मुफ्त ना है तो इसमें दिक्कत क्या है?
Exactly. वही मेघनाथ had gone for a BJP rally, right? He went to attend नरेंद्र मोदी वाली जो रैली हुई थी
कड़कड़दुमा,
एंड you guys should watch his watch that video of मेघनाथ at the BJP rally, and from whatever he spoke to the supporters there, most of them they were criticizing this whole freebie electricity, free ho gayi aur bijli pani hame nahi chahiye hum like especially women, you know, they were like no, we can pay for ourselves, we don't want this free come you know almost like bheek,
exactly.
which comes from a very privileged position, right?
Precisely,
not
yeah.
all women have access, like for example you know, the person who works at my house, she's very happy ki didi bas
of course she would be,
and that's a huge thing.
I think in a city like Delhi or for that example Mumbai, there is a you know huge labor class you know residing in the city,
so
उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत ही मैटर करते हैं, so I mean some people you know from the middle class
के बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जो मतलब जो भी है मुफ्तखोरी की बात, जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं, जब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए बड़े स्टेट के चुनाव भी देख लीजिए किसानों को लेके, क्योंकि दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र इतना है नहीं, तो किसानों को लेके बिजली माफ कर दी जाएगी, ये माफ मतलब बहुत सारी चीजें, तो कर्जा माफ कर दिया जाएगा जो हर गवर्नमेंट बोलती है, भले ही वो कोई से भी स्टेट में हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी गवर्नमेंट हो, तो वो जो ये मुफ्त की वाली बात कर रहे हैं ना, ये केजरीवाल तो बहुत बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है,
exactly.
जबकि जो कर्जा माफी होता है जो बोला जाता है उससे स्टेट के बेसिकली जो बजट पे बहुत एक अलग ही तरीके का प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल।
और
इसके लिए स्टेट के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाती है उससे, तो ये बोलना कि भाई मुफ्तखोरी करवा रहे हैं या मुफ्तखोरी कर रहे हैं लोग, तो ये तो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि जो आदमी अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको वो चीज मिल रही है आसानी से, तो उसमें क्या बुरी बात है, वो गलत बात है नहीं उसमें, और उसी पे पूरा चुनाव लड़ा जाता है, मतलब दिल्ली का छोड़ दीजिए, हर स्टेट में, पहला मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था
जी,
तो उसमें कांग्रेस ने बोला था, राहुल गांधी ने बोला था कि तुरंत कर्जा माफ कर दिया, वो बात अलग है कि अभी तक उन्होंने कर्जे माफ नहीं किए किसानों के उस तरीके से,
राइट,
सब उस पर राजनीति खेलते हैं, तो ये तो बोलना बिल्कुल ही बेमानी बात लगती है।
एंड दिल्ली इज अ लाइक अ स्मॉल स्टेट, आई मीन यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग एंड सब्सिडाइजिंग एजुकेशन इन वेरी prosperous parts of the
right.
world. For example, Germany, I mean, the government subsidizes education. So I think it's a very lame argument to make.
Anyway, my last question. What can we expect from this new government now?
कल मैंने ये सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से, सुशील गुप्ता से, तो उन्होंने कहा कि जो गारंटी योजना हम लाए हैं 10, उस पर काम करेंगे, जो जिसको मुफ्त खोरी कहा जा रहा है उसको जारी रखेंगे, और जो स्कूल और शिक्षा में चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य में चीजें बच गई है उस पर काम करेंगे।
एयर पोल्यूशन के बारे में कुछ कहा?
हाँ, लेकिन अब देखिए क्या होता है। और
कितना फोकस है आपका एयर पोल्यूशन पे?
किसी भी सरकार का मतलब प्रदूषण को लेकर उतना ज्यादा तो रहता नहीं है, लेकिन कम से कम अभी मुझे लगता है जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें आतिशी जैसे लोगों को शामिल किया जाएगा और शायद कुछ बेहतर हो।
I think that will be the biggest challenge, right, to
लेकिन लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में सरकार का पैसा लगता है, जो कि टैक्स पेयर्स का ही रहता है, बट उनको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तभी उनका जो खजाना है भरा रहेगा।
राइट, प्रतीक, नाउ कमिंग टू यू अबाउट द भीमा कोरेगांव, द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। पहले, सबसे पहले तो हमें जल्दी से एक इंट्रो बता दीजिए कि व्हाट वाज द भीमा कोरेगांव एंड एल्गर परिषद केस फॉर आवर लिसनर्स।
बेसिकली देखिए, जो ये कोरेगांव भीमा जो यलगार परिषद केस है, यलगार परिषद की एक मतलब एक मीटिंग हुई थी पुणे में, शनिवार वाला करके जगह है यहाँ पे, जहाँ पे एक सभा रखी गई थी 2017 में, 31 दिसंबर 2017 को, और वो इसलिए रखी गई थी, उसके अगले दिन कोरेगांव भीमा के 200 साल होने वाले थे, वहाँ पे एक विक्ट्री मेमोरियल है। पुणे के पास एक जगह है, तो वहाँ पे जो यलगार परिषद रखी गई थी उसमें बहुत बड़े काफी लोग आए थे वहाँ पे, जैसे उमर खालिद है, जिग्नेश मेवानी है, प्रकाश अम्बेडकर है, और भी ऐसे बहुत सोशल एक्टिविस्ट और इस तरीके के लोग आए थे वहाँ पे। और उसके अगले दिन जब वो कोरेगांव भीमा में जब ये जब जो जहाँ पे लोग जाते हैं मतलब अगले दिन इकट्ठे होते हैं सब, उनकी जो विक्ट्री मेमोरियल पे एक बेसिकली होमेज देने के लिए जाते हैं जस्ट टू पे द रिस्पेक्ट, तो वहां पे वो दंगा वंगा हो गया था। उसके बाद से ये केस पूरा जो बढ़ता चले गया
जी,
और फिर आगे जाके अब उसमें जो जैसा कि आपको पता है कि
गवर्नमेंट राइट, इट वॉज लेड बाई दिस, आई मीन दे ब्लेम द सीपीआईएम फॉर इट, है ना,
सीपीआई माइस्ट, मतलब
सीपीआई
उनका जो कनेक्शन जोड़ा गया है इस मामले में, मतलब जो बेसिकली माओवादी पार्टी है जिस बैंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको बोल दिया है सीधा कि भाई ये इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं।
जस्ट टेल अस ऑल द पीपल हु वर अरेस्टेड एंड हु आर स्टिल इन जेल।
देखिए इसमें कुल मिला के दो चरणों में इसमें गिरफ्तारियां हुई थी, टू स्टेजेस,
राइट,
एक 6 जून को हुई थी और एक 28 अगस्त को हुई थी, ठीक है। तो 6 जून में गिरफ्तारी हुई थी, उसमें महेश राउत करके एक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप का उन्होंने इसमें वो फेलोशिप फेलो है वो, जो कि गढ़चिरौली करके जो महाराष्ट्र में एक इलाका है जो बोलते हैं नक्सल प्रभावित है, नक्सल इन्फेस्टेड, तो ही यूज्ड टू वर्क देयर, ठीक है। तो वहाँ पे सोशल वर्क का काम करते थे, विस्थापित आदिवासियों के लिए लड़ते थे, उस तरीके का उनका काम था। उसके बाद शोमा सेन जो की नागपुर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर थी, इसी तरह सुरेन गडलिंग, नहीं उसके पहले, हाँ फिर ये सुधीर डवले, सुधीर डवले एक राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं जो दलित राइट्स के बारे में ये करते हैं। और फिर ये पहले गिरफ्तारी में ये तीन के अलावा, और शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर डवले, उसके बाद कौन था,
इन टोटल देयर वर अराउंड 23 अरेस्ट,
टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए, टोटल 10 लोग पे ये मुकदमा बना है, जिनमें से 9 लोग अंदर हैं जेल के और एक जो है गौतम नौलक्का वो बाहर है अभी,
बाहर है या हाउस अरेस्ट है?
हाँ, वो अभी उनका उनको कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है अरेस्ट पे।
सो प्रतीक, अभी क्या हो रहा है, लाइक शरद पवार
प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया उनको।
प्रतीक, एज सिंस द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मड इन महाराष्ट्र, शरद पवार हैज बीन एट द फोरफ्रंट टॉकिंग अबाउट द भीमा कोरेगांव केस, एंड ही आल्सो सेड दैट ही इज गोइंग टू सेट अप एन एसआईटी, राइट, टू प्रोब इनटू पुणे पुलिस का जो रोल था। तो आप हमें पुणे पुलिस का क्या रोल था इसके बारे में थोड़ा बताइए।
हाँ, बेसिकली दिसंबर में शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुणे में, उन्होंने बोला था कि भाई ये कोरेगांव भीमा का जो इन्वेस्टिगेशन है
जी,
ये बहुत ही बॉल्ट अप इन्वेस्टिगेशन लगता है, एंड जो पुणे पुलिस ने इस तरीके जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक एसआईटी बिठाएंगे, इन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं
जी,
एंड ही ऑल्सो सेड कि इस तरीके से मतलब इन लोगों को अंदर कर रखा है, बट बेसिकली रेज द क्वेश्चन ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुणे पुलिस, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा इस मामले को लेके ऐसा मतलब बोलते ना हलचल सी होने लगी. मतलब
जी.
अब वो जो एसआईटी फॉर्म करने की जो बात चल रही थी कि भाई इसकी जांच एसआईटी फॉर्म करके करवाएंगे, तो जब ये अगले महीने तक ये जब बात ही चल रही थी तो सीधा क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सीधा ट्रांसफर कर दिया. और अभी मौजूदा स्थिति में इसको लेके कोर्ट में चल रहा है. अभी 14 फरवरी को वापस एक तारीख है कि भाई, और एनआईए ने इसमें एफआईआर भी दर्ज कर दी है. इसमें जो पुणे पुलिस ने किया था उसमें 23 लोगों पे उन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी. इसमें उन्होंने 11 लोगों पे की है. बट इस एफआईआर में उन्होंने सेडिशन के केसेस हटा लिए हैं. सेडिशन की जो धारा होती है वो हटा दी है इसमें से.
अच्छा.
अभी एनआईए ने इस जो इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स को लेके कोर्ट में हियरिंग चल रही है पुणे के कोर्ट में. तो 14 फेब को उसकी अगली तारीख है. ठीक है. अब रही बात जो सीरीज की, तो लाइक मेरी जो सीरीज करी है वो इस पे बेस्ड है कि भाई पुणे पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया. पुणे पुलिस का ये पूरा केस वो कुछ लेटर्स के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. अब वो लेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ना ही उन लेटर्स में कोई डेट्स हैं, ना ही उसका कुछ नाम है. किसी का आधा आधा नाम लिखा हुआ, कभी किसी का आधा, किसी का पूरा. मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि भाई ये जानबूझ के इस तरीके के नाम लिखे गए.
प्रतीक,
ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पुणे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इनके अरेस्ट के बाद 7 जून को. ठीक है. उसको एक ही दिन पहले ही इतना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स टाइम्स नाउ के वक्त, टाइम्स नाउ ने उसको एक डॉक्यूमेंट को दिखाया.
जी.
ठीक है. एक दिन पहले पुणे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सुधा भारद्वाज के अरेस्ट होने के एक महीना पहले रिपब्लिक टीवी सुधा भारद्वाज का लेटर दिखा रहा है कि मतलब बोल दिया कि सुधा भारद्वाज ने लिखा है और सम कॉम्रेड सुधा ने लिखा हुआ था. अब इतने संबित पात्रा उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. वो लेटर, एक लेटर उसमें भी था जिसको लेके मीडिया ने हेडलाइन बनाई थी कि प्लॉट टू किल पीएम. उसके बाद जो पुणे पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत सारे लेटर्स लिखे कि भाई इन लोग के खिलाफ कोई केस है क्या वहां पे, या फॉर एग्जाम्पल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है नंदिनी सुंदर, उनके बारे में लिखा था कि भाई इनके इनके उसमें लीडरशिप में कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है क्या. इसी तरह तेलंगाना पुलिस को लिखा था. उसके बाद त्रिची सेंट्रल प्रिजन को भी इन लोगों ने लिखा था कि भाई ये लोग कौन कौन मीटिंग करने आया था वहां पे. अब छत्तीसगढ़ पुलिस का ये देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने साफ मना कर दिया कि भाई इनमें से किसी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है. तो पुणे पुलिस ने इसके बाद क्या किया, इसके बाद पहाड़ सिंह करके एक सरेंडर नक्सल है, इनके पास इस बंदे के ऊपर 47 लाख का इनाम था. मतलब ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ का एक एक जोन है उसका वो मतलब काफी मेन इंपॉर्टेंट मेंबर था. तो जब इसने पहाड़ सिंह ने सरेंडर किया उसका सबसे पहले इंटरव्यू लिया ऑप इंडिया ने. ऑप इंडिया नाम की एक वो जो वेबसाइट है
अच्छी तरह से
इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने इस मतलब इस मामले के बारे में भी एक सवाल कर दिया जिसमें पहाड़ सिंह बोल रहा है कि हाँ इन सबको तो मैं जानता हूँ तमाम चीजें इस तरीके से.
जी.
ठीक है. और इससे कुछ दिन बाद ही सुधा भारद्वाज और इन सब का अरेस्ट होता है. सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग. ठीक है. अब मैंने जब पहाड़ सिंह से बात करी थी तो पहाड़ सिंह को एक्चुअली इन लोग के बारे में ढंग से कुछ पता ही नहीं है.
जी.
उन्हें एक दो नाम पता है और अगर आप उनसे पूछोगे डिटेल बोले हाँ वो ये बोलते हैं हाँ नाम सुना है ना इनका, वो तेल तुमड़े बताते थे. और अब पहाड़ सिंह से बात करने के लिए भी पहाड़ सिंह सरेंडर नक्सल है तो आप सोचिए वो पुलिस की इतनी ज्यादा निगरानी में रहते हैं. वो जो इंटरव्यू दिया था वो भी पुलिस की ही उसमें दिया था उन्होंने.
प्रेजेंस
तो अगर आप ठीक है सरेंडर नक्सल का आप ठीक है बयान को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोर्ट में उसको चैलेंज भी कर सकता है, लेकिन आपको लगता है कि क्या उनका बयान इतना वो वाजिब माना जाएगा. और पुणे पुलिस ने इसके अलावा वहां के जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलाइट कैडर है उनके बारे में डिटेल्स निकलवाई और चार्जशीट में उसको लगा दिया. कहीं भी इस इन्वेस्टिगेशन में यह नहीं दिख रहा है कि भाई इन 9 लोगों का सीपीआई माइस से कोई कनेक्शन है या इन 9 लोगों का यलगार परिषद से कोई कनेक्शन है या कोरेगांव भीमा से.
जी.
इन 10 लोगों में से सिवा एक बंदे को छोड़ के, श्री डब्ल्यू को छोड़ के एक भी बंदा यलगार परिषद में उस दिन वहां था ही नहीं. ठीक है. उसके बाद कभी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अगर मतलब है तो बहुत कुछ चीजें बता रही है लेकिन आपको एक मेन चीज बताता हूँ. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब भी आप सीज करती है कोई पुलिस उसकी हैश वैल्यू निकाली जाती है ऑन द स्पॉट.
जी.
ठीक है. हैश वैल्यू हर चीज की तुरंत बदलती है अगर आप उसमें कुछ छिड़खानी करोगे. ठीक है. पुणे पुलिस ने उसकी हैश वैल्यू नहीं निकाली.
वाओ.
हैश वैल्यू निकाली उसको कुछ दिनों बाद उसको एफएसएल भेज दिया. ठीक है. और अब जो पिछले एक साल से वो लोग ये जो मतलब जो डिफेंस जो है जो बचा पक्ष है वो तब से एक साल से बोल रहा है कि आप वो एविडेंसेस तो दीजिए।
हाँ।
और अभी तक उसकी हैश वैल्यू चेक नहीं है। पुणे पुलिस ने उसकी भी क्लोन कॉपी इनको दी है
जी।
अब आपको क्या पता चलेगा कि भाई आपने कौन सा, अगर हैश वैल्यू भी निकाली नहीं है तो समझ में नहीं आएगा ना कि आपने क्या चेंज किया क्या नहीं किया।
बिल्कुल।
उसकी क्लोन कॉपी पुणे पुलिस ने इनको दी है, मतलब वो ओरिजिनल एविडेंस छोड़ दीजिए, उसकी क्लोन कॉपी निकलवाई और वो दी है।
So basically,
से क्या हैश वैल्यू निकालोगे ओरिजिनल से कंपेयर करके?
राइट।
तो ओरिजिनल की हैश वैल्यू नहीं निकाली।
ओके।
तो मतलब बहुत चीजें इस केस में, बट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मतलब बहुत ही बस इसमें यही साबित करने की कोशिश करी कि भाई कैसे तो भी इनका नाम कहीं किसी लेटर लेटर में लिखो या इस तरीके से लिखो कि ये नक्सलवादी लगे।
Yeah, so basically, it would not be completely incorrect to say that it is a center's ploy to, you know, carry forward that whole narrative that anybody who is sympathetic to tribal cause, like in conflict areas, they are urban nexus.
नहीं बोला कि केंद्र सरकार और स्टेट, अभी आप फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी
जी,
तो कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने भी सुधीर धामले को अंदर करवाया था, कबीर कला मंच को जब ये लोग थे तो उनको नक्सलवादी बोल के इन्होंने भी अंदर करवाया था। तो क्या ये सरकारों का गेम होता है आपस में और कोई बात
जी,
नहीं
जी,
अभी
जी।
वो सत्ता में आ गए हैं
हाँ।
तो उन्होंने इस मुद्दे पे लेके सवाल उठा दिए।
सो इसका नेक्स्ट क्या नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 14th Feb
14 फेब
हाँ। एंड व्हाट इज इट अबाउट इफ यू कैन टेल अस अगेन?
कि ये केस पेपर्स, बेसिकली केस पेपर्स जो हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो पेपर्स हैं, इस केस से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं
जी,
वो ट्रांसफर किए जाएं एनआईए के पास।
हाँ, ओके। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। लेट्स फिनिश ऑफ विद सम रिकमेंडेशंस। प्रतीक, आप बताइए।
अभी मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन है जो कोरियन डायरेक्टर है बोंग जोंग हू,
थर्ड वन इज कमिंग।
और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ एनएल सेना प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारा जॉन्ड्री का अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है
जी,
तो बताऊ मैं उसके बारे में?
जी बिल्कुल।
हाँ, तो अभी न्यूज लॉन्ड्री एक एनएलसीना प्रोजेक्ट कर रहा है
जी।
बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सबको पता है कॉन्फ्लिक्ट है, वो बड़ा जोन है वो, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की आड़ में वहाँ बहुत इतने हजारों की तादाद में ऐसे आदिवासी हैं जिनको जेलों में डाल रखा है, 9-9 साल लोग हैं, लेकिन कोर्ट में इनकी केस फाइल तक नहीं आई है
जी जी।
और मतलब ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि अगर मेरा और बसंत का नाम एक है और बसंत नक्सलाइट और मैं नहीं हूँ, तो पहले नाम पे भाई मेरे को मतलब किसी का भी अगर नक्सलाइट से नाम भी मैच कर गया
जी,
पहला नाम मैच कर गया या कुछ मैच कर गया, तो उनको अंदर डाला हुआ है, उनकी हेयरिंग शुरू नहीं हो रही है, उनके कोर्ट के रिकॉर्ड्स गायब हैं।
वाओ। सो प्रतीक, आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं
और उनको जेल में पता नहीं है, उनको पता भी है तो वो जा नहीं पाए, ऐसी स्थिति है वहां पे।
ओके। So,
ये इस पे हम लोग हमारा जो एनएल लॉन्ड्री जो हमारा कर रही है जो प्रोजेक्ट एनएल सेना, तो इसी के ऊपर है। और मेरी सब्सक्राइबर्स से अपील है कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इसमें कंट्रीब्यूट करें।
यस, प्लीज गो टू www.newslaundry.com/sena एंड यू विल फाइंड द प्रोजेक्ट देयर एंड यू कैन कंट्रीब्यूट हाउ मच एवर यू वांट। सो वी रियली वांट प्रतीक टू गो एंड परस्यू दिस स्टोरी, सो प्लीज डू द ऑनर्स। एंड बसंत,
हाल ही में प्रियंका दुबे गई थी, बीबीसी की रिपोर्टर है प्रियंका दुबे, जो कश्मीर से लौट कर रिपोर्ट की है कि 370 हटने के बाद जब वहाँ इंटरनेट बंद है और तमाम प्रतिबंध लगे हुए, उस दौरान लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो उसी को लेकर काफ़ी शानदार और एक संवेदनशील रिपोर्ट है बीबीसी हिंदी पे, तो वो हमारे जो दर्शक हैं और श्रोता हैं वो पढ़ें।
थैंक यू। एंड अयन?
Yeah, so I'm recommending an opinion piece by Mihir Sharma, which came out on the NDTV website last evening after the results had been declared. So it's titled as Kejriwal didn't stand up to Modi, he sidestepped him. So Mihir Sharma basically argues that throughout the campaign, Aam Aadmi Party ran a very, they adopted a very defensive strategy and without actually trying to challenge the disturbing narrative being peddled by the BJP. And that's why he basically says that, the liberals or in general the people who oppose the kind of politics that BJP espouses should not be happy about Aam Aadmi Party's victory in Delhi, because fundamentally they did not try to challenge the argument put forward by the BJP. So if AAP won the elections, BJP won the argument. So that's what he's saying. So I think it's worth looking at this since the results are come out.
All right. My recommendation for our listeners and viewers this week is Taika Waititi's new film, which won a lot of awards. It's called Jojo Rabbit. You must have heard about it. Yeah. So it's set during the downfall of the Nazi regime, right? And it's a completely different take on the whole ideology. And it centers around this little boy who is like a Nazi supporter through and through. Like, he's been brainwashed and he's got an imaginary friend, and guess who that is? That's Hitler. And it's brilliant. You guys should watch it. And if you liked what you heard, please rate our podcast on iTunes or whatever platform you're tuned into. We also have a bunch of other podcasts, like Ayan said. We've got Awful and Awesome, Hafta. We had like Faye D'Souza on Hafta last week. Please subscribe, and because better the rating, more the reach, and that means better content.
और अगर ये podcast video आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने social media पे जरूर साझा करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें.
And also, please write to us if you have anything to say, any suggestions. We're like really looking forward to hear from you guys. So please write to contact@newslaundry.com with Reporters Without Orders in the subject line. And with that, this podcast is adjourned.
All the News Laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes, and any other podcast platform.
Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs, and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. And subscribe to our YouTube channel.